आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आज के संक्षिप्त समाचार वैशाली जैन के साथ। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी का कहना है कि राष्ट्र के नाम उनके संबोधन की सामग्री मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध और उसके ऑस्ट्रेलिया पर पड़ रहे प्रभावों को लेकर सरकार के मौजूदा रुख के अनुरूप होगी। ये राष्ट्रीय संबोधन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा, जिसे टीवी और रेडियो नेटवर्क पर लाइव दिखाया जाएगा। इसमें युद्ध के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया की रूपरेखा पेश किए जाने की उम्मीद है। संसद में बोलते हुए विपक्ष नेता एंगस टेलर ने प्रधानमंत्री से पूछा कि ऐसा क्या बदला है जिसकी वजह से यह संबोधन दिया जा रहा है। इस पर अल्बनीजी ने कहा कि इस संघर्ष का रोजमर्रा के जीवन पर पड़ रहा प्रभाव ही उनकी सरकार की सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है। दूसरी ओर पूर्व ट्रेजरी सचिव और सेटलमेंट सर्विसेज इंटरनेशनल की सीईओ ने ऑस्ट्रेलिया में विदेशी कौशल की मान्यता प्रक्रिया को तेज, निष्पक्ष और किफायती बनाने की मांग की है, ताकि देश की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। नेशनल प्रेस क्लब में संयुक्त संबोधन में मार्टिन पार्किंसन और वायलेट रियोमिलियोटिस ने कहा कि नए आर्थिक आंकड़ों से पता चलता है कि 2,50,000 से अधिक स्थायी प्रवासी अपने कौशल से कम स्तर की नौकरियों में काम कर रहे हैं, जबकि वे लाइसेंस प्राप्त पेशों में महत्वपूर्ण कमी को पूरा कर सकते हैं। दोनों का कहना रहा कि प्रवासियों के कौशल और योग्यताओं की मान्यता से जुड़ी प्रक्रियाओं में सुधार करने से उत्पादकता बढ़ेगी और अधिक मजबूत समुदायों का निर्माण होगा। मार्टिन पार्किंसन ने कहा कि वे कौशल और योग्यता मान्यता के लिए एक स्वतंत्र कमिश्नर नियुक्त करने की मांग कर रहे हैं, ताकि राज्यों और क्षेत्रों में एक समान और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित कही जा सके। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख यहूदी संगठनों ने इजराइल के एक नए कानून को लेकर गहरी चिंता जताई है, जिसमें घातक हमलों में दोषी ठहराए गए फिलिस्तीनियों के लिए मौत की सजा को डिफॉल्ट बनाया गया है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ज्यूरी ने ज़ियोनिस्ट फेडरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया इसराइल एंड ज्यूइश अफेयर्स काउंसिल के साथ मिलकर इस कानून की निंदा की है। अपने बयान में परिषद ने कहा कि उसे इस कानून के भेदभावपूर्ण रूप से लागू किए जाने को लेकर चिंता है। उनका कहना था कि ये कानून केवल राष्ट्रीयता के आधार पर अलग अलग मानदंड लागू करता है, जो सामान्य न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। इस कानून की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आलोचना हो रही है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस, मानवाधिकार संगठन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम के साथ दिए गए एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर शामिल है। वहीं आलोचकों का कहना है कि न्यू साउथ वेल्स में ड्रग डायवर्जन पहल पुलिस के विवेकाधिकार और खराब डिजाइन के कारण कमजोर हो रही है। न्यू साउथ वेल्स के अपराध आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार फरवरी 2024 से मार्च 2025 के बीच लगभग 12,000 संबंधित ड्रग मामलों में से केवल 9% मामले ही लोगों को अदालत से हटाकर वैकल्पिक प्रक्रिया में भेजा गया। आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि हर 11 में से 10 पात्र अबोरिजिनल लोगों को कोर्ट भेजा गया, बजाय उन्हें क्रिमिनल इन्फ्रिंजमेंट नोटिस देने के। इसके मुकाबले गैर अबोरिजिनल लोगों में हर 3 में से 2 ही लोगों को कोर्ट भेजा गया। अबोरिजिनल लीगल सर्विस का कहना है कि ये आंकड़े पुलिस प्रणाली के भीतर व्यवस्थित भेदभाव की ओर इशारा करते हैं और ये कार्यक्रम फर्स्ट नेशंस लोगों के लिए असफल साबित हो रहा है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि मध्य पूर्व में एक महीने तक चला युद्ध अरब देशों की पिछले साल की पूरी आर्थिक वृद्धि को खत्म कर सकता है। यह अनुमान यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट में सामने आया है, जिसे युद्ध के 5वें सप्ताह में जारी किया गया है। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता के अनुसार इस संघर्ष के कारण क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं को उनके कुल GDP का 3.7% से लेकर 6% तक का नुकसान हो सकता है। ये नुकसान लगभग 120 से लेकर 194 अरब तक हो सकता है, जो 2025 में क्षेत्र की कुल आर्थिक वृद्धि से भी अधिक है। और अंत में खबरें भारत से। भारत में आज से जनगणना 2027 की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये पहली बार पूरी तरह से डिजिटल तरीके से कराई जा रही है। ये भारत की 16वीं और आजादी के बाद 8वीं जनगणना है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास भी बताया जा रहा है। इसमें मोबाइल ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए डेटा जुटाया जाएगा, साथ ही नागरिकों को स्वगणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा भी दी जाएगी। जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सर्वे अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच पूरा किया जाएगा, जबकि दूसरा चरण बाद में जनसंख्या से जुड़ी विस्तृत जानकारी एकत्र करेगा। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए 11,718 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 की तय की गई है। इसी के साथ 1 अप्रैल 2026 के संक्षिप्त समाचार यही समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।